रात हो चुकी थी। हवेली के बाहर अंधेरा गहरा गया था और अंदर पीली रोशनी में सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन उस शांति के पीछे चार लोगों के दिलों में हलचल मची हुई थी। अविनाश, सुजीत, सुप्रिया और नंदिनी, चारों को पूरा यकीन था कि रत्ना देवी, शकुंतला और वीरेंद्र शाम तक वापस लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उनकी परेशानी तब और बढ़ गई जब धानी ने हंसते हुए लेकिन जिद के साथ कहा, नहीं, आप लोग ऐसे नहीं जा सकते, कम से कम 2 दिन तो रुकिए। उसकी आवाज़ में इतना अपनापन था कि मना करना मुश्किल हो गया। रत्ना देवी ने एक नज़र शकुंतला और वीरेंद्र की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा दी, ठीक है बेटा, 2 दिन रुक जाते हैं। बस यहीं से चारों के चेहरे पर मुस्कान के पीछे छुपा डर और गहरा हो गया। 2 दिन, इतने समय में तो सब कुछ खुल सकता है, ये ख्याल सबके दिमाग में एक साथ आया था। डिनर का वक्त, बड़ी सी डाइनिंग टेबल सजी हुई थी, सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे, नौकर एक एक करके खाना परोस रहे थे। बाहर की हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी, लेकिन अंदर का माहौल अजीब सा भारी था। सुषमा देवी एक तरफ बैठी थी, आज उनकी आंखों में हल्की सी चमक थी क्योंकि इतने दिनों बाद घर में अपनी लोग आए थे। उनके पास ही रत्ना देवी बैठी थी और सामने धानी और वरुण, दूसरी तरफ अविनाश, सुजीत, सुप्रिया और नंदिनी। सब चुपचाप खाना खा रहे थे, जैसे हर कोई कुछ सोच रहा हो। तभी अचानक धानी ने चुप्पी तोड़ी। वैसे दादी, उसने रत्ना देवी की तरफ देखते हुए कहा, हमारे विशु चाचू कैसे हैं? उसकी आंखों में शरारत थी और आवाज़ में उत्साह। वो आज भी बहुत हैंडसम है ना? टेबल पर बैठे सभी लोग एक पल को रुक गए। सुप्रिया और नंदिनी ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे उन्हें डर हो कि बात कहीं और ना पहुंच जाए। लेकिन धानी तो अपने ही मूड में थी। मैं उनकी तस्वीरें न्यूज़पेपर में देखती रहती हूँ, आपको पता है, मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि वो बहुत हॉट हैं। ये सुनते ही वरुण हंस पड़ा, हाँ सच में, मेरे दोस्त भी यही कहते हैं। धानी ने आके कहा, कोई यकीन ही नहीं करता कि वो 40+ हैं। उसकी बात में गर्व साफ झलक रहा था, जैसे वो किसी अपने पर फख्र कर रही हो। रत्ना देवी हल्के से मुस्कुराई, उनकी आंखों में प्यार था। हाँ बेटा, वो आज भी वैसे ही हैं और दिल के भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने प्यार से कहा। फिर थोड़ा आगे झुककर बोली, तुम लोग कभी हवेली आना, अपने चाचा और चाची से मिलना, तुम्हारी चाची तो एकदम गुड़िया सी है, बहुत प्यारी। उनकी आवाज़ में अपनापन था और एक सच्ची खुशी भी। फिर उन्होंने आगे कहा, और तुम्हारे आर्यन भैया और तुम्हारी भाभी भी हैं वहाँ, पूरा परिवार है। धानी की आंखें चमक उठी, सच? फिर तो हम जरूर आएंगे, उसने उत्साह से कहा, है ना वरुण? वरुण ने तुरंत सिर हिलाया, हाँ बिल्कुल, हम तो जरूर जाएंगे। उनकी खुशी टेबल पर एक अलग ही माहौल बना रही थी, लेकिन उसी टेबल के दूसरे कोने पर चार चेहरे और भी थे, जिनकी मुस्कान अब और फीकी पड़ चुकी थी। सुप्रिया ने पानी का ग्लास उठाया, लेकिन उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। नंदिनी ने नजरें झुका ली, जैसे वो किसी सोच में डूबी हूं। सुजीत और अविनाश दोनों चुप थे, लेकिन उनके दिमाग तेजी से चल रहे थे। अगर ये बच्चे वहां गए तो सब कुछ सामने आ जाएगा, ये डर अब साफ उनके चेहरों पर दिखने लगा था। उधर शकुंतला चुपचाप सब देख रही थी, उसने बच्चों की खुशी भी देखी और बड़ों की बेचैनी भी। उसके मन में अब कोई शक नहीं था, यहाँ कुछ छुपाया जा रहा है। उसने धीरे से पानी का घूंट लिया और मन ही मन ठान लिया, कल मैं सब जानकर रहूंगी। डिनर खत्म हुआ, सब धीरे धीरे उठने लगे, लेकिन उस रात कोई भी चैन से नहीं सोने वाला था। एक तरफ सच था जो बाहर आने के लिए बेचैन था, और दूसरी तरफ झूठ जो हर हाल में खुद को बचाना चाहता था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के अंदर तूफान पल रहा था, जहां मुस्कानें दिख रही थी लेकिन दिलों में डर बढ़ता जा रहा था। उधर बड़ी हवेली, शाम ढल चुकी थी और शहर की हल्की हल्की रोशनी अब आसमान में फैलने लगी थी। मुख्य दरवाजा खुला और अंदर आए विश्वनाथ और श्यामली। दोनों के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, दिन भर ऑफिस की भागदौड़, मीटिंग्स, फाइल्स और जिम्मेदारियां सबने उन्हें पूरी तरह थका दिया था। विश्वनाथ ने कोट उतारते हुए लंबी सांस ली, आज तो बहुत ही भारी दिन था, उन्होंने सोफे पर बैठते हुए कहा। श्यामली भी पास आकर बैठ गई, सिर्फ आपका ही नहीं, मेरा भी वही हाल है, उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन आंखों में थकान छुपी नहीं थी। तभी अचानक पीछे से 2 आवाजें आईं, बिस अब थकान खत्म। दोनों ने मुड़कर देखा, आर्यन और अदिति खड़े थे, चेहरों पर शरारती मुस्कान। अरे तुम लोग? श्यामली ने हैरानी से पूछा। आर्यन आगे बढ़ा, चलो आप दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, हमने आपके लिए कुछ प्लान किया है। विश्वनाथ ने भौहें चढ़ाई, अभी? इतनी रात को? अदिति ने हंसते हुए कहा, हाँ अभी, और कोई सवाल नहीं, बस तैयार हो जाओ। श्यामली ने हल्का सा शक भरी नजरों से दोनों को देखा, बताओ तो सही क्या किया है? अदिति ने सिर हिलाया, नहीं सरप्राइज है, वहीं जाकर पता चलेगा। आर्यन ने भी जोड़ दिया, आप दोनों बस तैयार हो जाइए, बाकी हम संभाल लेंगे।
दोनों की जिद के आगे विश्वनाथ और शामली को मानना ही पड़ा। कुछ ही देर में दोनों तैयार होकर बाहर आए। शामली ने हल्की सी साड़ी पहनी थी और विश्वनाथ फॉर्मल्स नहीं थे, लेकिन अब थोड़ा फ्रेश लग रहे थे। अब तो बताओ, विश्वनाथ ने फिर पूछा। आर्यन मुस्कुराया, बस हमारे साथ आइए। चारों सीढ़ियों की तरफ बढ़े और धीरे धीरे छत की ओर जाने लगे। जैसे जैसे वो ऊपर पहुंच रहे थे, हल्की हल्की रोशनी नजर आने लगी और जैसे ही दरवाजा खुला, शामली एकदम रुक गई। ओह, उसके मुंह से बस इतना ही निकला। पूरी छत सजी हुई थी, चारों तरफ फेरी लाइट्स चमक रही थी, हल्की हल्की मोमबत्तियां जल रही थी, बीच में एक टेबल सजी हुई, फूलों की पंखुड़ियां बिखरी हुई और माहौल एकदम शांत और खूबसूरत, जैसे कोई खास डेट प्लान की गई हो। शामली की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, ये सब? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों के लिए। अदिति आगे बढ़ी और शामली का हाथ पकड़ लिया। आज कोई ऑफिस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस आप दोनों। विश्वनाथ भी कुछ पल के लिए चुप रह गए। उनके चेहरे पर पहली बार दिन भर की थकान की जगह एक सुकून दिखा। शामली ने चारों तरफ देखा, फिर हल्के से मुस्कुरा दी। बहुत सुंदर है, उसकी आवाज में खुशी थी जो दिल से निकली थी। अदिति ने शरारत से कहा, तो अब एंजॉय करिए, फिर आंख मारते हुए बोली, और शर्माना मत, हस्बैंड वाइफ हो आप दोनों। ये सुनकर शामली हल्का सा शर्मा गई और विश्वनाथ भी मुस्कुरा दिए। आर्यन ने हंसते हुए कहा, हम नीचे जा रहे हैं, पूरा टाइम आपका है। दोनों ने उन्हें वहीं छोड़ दिया और वापस सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। पीछे छत पर विश्वनाथ और शामली अकेले रह गए। हवा हल्की हल्की चल रही थी, मोमबत्तियों की लौ हिल रही थी और माहौल धीरे धीरे और भी खूबसूरत होता जा रहा था, जहां थकान की जगह अब प्यार और सुकून ने ले ली थी।